को कि जिन्होंने पाकिस्तान में अमली तौर पर फिरका वारियत को खत्म करने के लिए अपना करदार अदा किया, जिन्होंने ये करदार ड्राइंग रूमों से निकालकर वाकई मैदान में लेकर आए और इस पाकिस्तान के अंदर आज इस पूरे अरसे में जितनी शिया सुन्नी वहदत आपको नजर आती है, इनमें कलीदी रोल है उस शख्सियत का। गुजारिश करूंगा जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब से, चेयरमैन सुन्नी धार काउंसिल के तशरीफ लाए और अपने ख्याल का इजहार करें।
बेसिकली दुनिया में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज हरगिज नहीं है, इसलिए कि अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करें, और ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जिसके हाथ में ताकत है दुनिया उसके आगे सरनिगुं है, और अब हमारे हाथ में ताकत नहीं रही, हम इसी चीज पर मान किए रहते हैं कि जब ताकत थी तो हमने गैर मुस्लिमों को ह्यूमन राइट्स दिए, हमने उन्हें तमाम हकूक मुयसर किए, हमने उन्हें अपने ममालिक में जो भी शहनशाहियत के दौर हों, खिलाफत के दौर हों, तो भी उसे ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए गए। लेकिन आज कश्मीर हो, बर्मा हो, फलस्तीन हो, बोस्निया हर्ज़ेगोविना हो, चिचनिया हो, अब किसी जगह पर चले जाएं, ह्यूमन राइट्स मुसलमानों के लिए नहीं, शायद बनाने वाले की नीयत ये थी या इन एनजीओ की नीयत ये है कि इनकी एप्लीकेशन नॉन मुस्लिम्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर मुस्लिम्स। क्योंकि अगर मुसलमानों के लिए होती, मैं तो उस दिन भी कह रहा था कि अपने एक फौजी को तालिबान की कैद से रिहा करवाने के लिए अमेरिका उन्हीं तालिबान से 3 साल मुजाकरात भी करता रहा और उसी गवांतानामो से उन दहशतगर्दों को भी छोड़ दिया जिन्हें दहशतगर्द कहा गया और वो कतर के हवाले किए गए सिर्फ एक फौजी की जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन अगर आप आज फलस्तीन में देखें, उन माओं को देखें जिसके 2-2 साल के, 1-1 साल के, 5-5 साल के बच्चे शहीद हो गए, और अपने आप को उस जगह पर रखें, एक बाप होने की हैसियत से अगर 4-4 बच्चों का जनाजा उठाना पड़े तो फिर शायद हम उस तकलीफ का इदराक कर सकें कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन किस चीज का नाम है। लेकिन ये हमारा कसूर नहीं, हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान माशाल्लाह अपनी रियासत को बचाने के लिए आले सऊद के चरणों में जाके बैठे हैं, हमारे साबका हुक्मरान माशाल्लाह यूनाइटेड स्टेट्स में 15 साल तक मुंह ना आने की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि आप सऊदी अरब तो चले गए, आप यूएसए तो चले गए, आपने वहां पर अपने डोमेस्टिक मसाइल के ऊपर तो बात कर ली, आप किसी किला इस्लाम के सरबराह हैं कि आपकी जुबान को इतनी जरूरत ना हुई क्या फलस्तीन के हवाले से बात कर पाते? इसलिए कि वो चाहते नहीं है। कहा जाता है कि गवर्नमेंट ये रिप्रेजेंटेटिव होती है आवाम की डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर। मैं एक छोटी सी सिर्फ इसमें लाइन ड्रॉ कर लू, पूरी दुनिया ने बवेला किया कि हमास मुंतखब हुई फलस्तीन के अंदर, गलत किया, लेकिन वहां के आवाम ने उसे मुंतखब किया था, शफाफ तरीके से इक्तदार में आई थी, और जो शफाफ तरीके से इक्तदार में आया हो उसका प्रैक्टिकल स्टेप आपके सामने मौजूद होता है। आज आप देखिए हमास इसराइल से बरसरे पैकार है, क्या वहां की आवाम ने अपनी हुकूमत का पीछा छोड़ दिया या अपनी हुकूमत के साथ खड़ी होकर बरसरे पैकार है? इसलिए कि टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, और यही फिलॉसफी अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इस आखिरी ज्यादा इलेक्शन से जो गवर्नमेंट इकतदार के अंदर आई, आज उसकी तरजीहात ही मुख्तलिफ है। पूरे पाकिस्तान की आवाम करोड़ों की तादाद में उनकी दिल आजारी हो चुकी है, मुसलमान रो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और हमारी वजारत खारजा खामोश है, हमारे वजीर आजम खामोश हैं, और देखिए मैं तो ये कहता हूँ माजरत के साथ, मेरी शायद ये बात ज़रा सख्त भी हो जाए, मैं हमेशा बात कर जाता हूँ, ये कौम की बेहिसी जो होती है इस किस्म के पादामाल बनाना पर मुसलत किए जाते हैं। आज आप देखिए मेरा एक थोड़ा सा उधर से मई साइड पे आता हूँ, हम अपने आप को देख लें फिर उसके बाद हम देखेंगे हम फलस्तीन को डिफेंड कर सकते हैं या नहीं, और मेरे पास उसका एक सोल्यूशन भी है डिफेंड करने का, बड़ा आसान सा 20 सेकेंड लगेंगे फलस्तीन का मसला हल होते। पहले आप ये देखें कि IDPs हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, अफवाज पाकिस्तान एक महाज पर बरसरे पैकार हैं, दहशतगर्दों के साथ, जानवरों के साथ, दरिंदों के साथ हैं। अब अफवाज का मकसद लड़ना होता है, गवर्नमेंट का मकसद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना होता है। अगर अफवाज ने IDPs का खाना भी पकाना है, IDPs के कैंप भी लगाने हैं, तो फिर मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट अफवाज को ही दे लेनी चाहिए। इस बात से बात उठा लोग एतराज कर लेंगे गलत बात है, आप मुझे ये बताइए, और मैं अपने मीडिया के उन भाइयों से भी सवाल करूंगा कि हमारी सहरी और रमजान की नशरियात आप देखिए करोड़ों रुपए के सेट लगे हुए हैं, डेली करोड़ों रुपए वहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, कहीं गाड़ियां निकाली जा रही हैं, कहीं मोटरसाइकिल्स निकाले जा रहे हैं, क्या ये नशरियात खत्म करके इतना पैसा अगर हम उठा के IDPs को पहुंचा दें तो क्या पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं समझ सकता? शख्सियत कौम हम अपनी जहद का तयन ही नहीं कर सके, हम तो ये समझते हैं कि ये नागहानी आफत नाजिल होगी, ये नागहानी नहीं, हम इसे बुला के अपने ऊपर नाजिल करते हैं। और मैं तो तुरंत नवाज गंडापुर साहब के मौकों से भरपूर तारीफ करता हूं, तारीख का छोटा सा ताबिर कुछ पढ़ने का इत्तेफाक भी हुआ, आले सऊद अगर खादम हरामैन शरीफाइन होती तो आज आलमी इस्लाम की हालत में डिप्लोमेटिक चीजें अपनी जगह पर होंगी, कौमें तारीख में हमेशा अपनी गैरत के नाम से जिंदा याद की जाती हैं। सुल्तान टीपू का नाम आज इसलिए जिंदा है कि उस शेर ने यह कहा था कि शेर की एक साल की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, इसलिए जिंदा नहीं है कि वो हारने के बावजूद उन्होंने किला पता कर लिया था, ये वो काम कर लिया था। फलस्तीन को आजाद करना है तो आलमे इस्लाम को पाकिस्तान की रूह को समझना होगा, ये ममलिकत जो 27 रमजान मुबारक को वजूद में आई और रियासत मदीना के बाद दूसरी अजराती रियासत जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नजरिए पर वजूद में आई, हमें बतलाया जाता है कि हमारे हर मिसाइल की रेंज इसराइल है, नो कंसर्न विद अरब स्टेट्स, क्योंकि उनके और कस्टम में फर्क मैं आपको बतलाता हूं, सिर्फ यह है इसराइल अमेरिका, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ना हमारा हक है, इसलिए कि आप जो इस दुनिया में करते हैं इसकी जजा खैर की सूरत में, जन्नत की सूरत में या दोजख की सूरत में आखिरत में मिलेगी, लेकिन अगर आप इस दुनिया में मेहनत करते हैं तो उसका अंजाम काफर को भी उस मेहनत के समय की सूरत में मिलेगा। अब अगर काफर ने मेहनत कर ली, वो साइंस में आगे चला गया, वो टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, वो दुनिया में हम किस फील्ड में आ गया, रिसर्च में आगे चला गया, तो इसमें उनका कसूर नहीं, हमारा कसूर है। उन्हें अप्रिशिएट कीजिए कि उन्होंने मेहनत की है। और वहां पर इक्तदार में वो हुकूमतें हैं जो अपने आवाम के मिजाज को समझती हैं। अभी फ्रांस में आवाम सड़कों पर आई और फ्रेंच गवर्नमेंट फलस्तीन के वाला से अपना मौकफ उसका चेंज हो गया। क्या यहां पर चेंज हुआ? इसलिए कि जब आपके मुंतखब नुमाइंदे ही सही नहीं होंगे, उनकी प्रायोरिटीज वेस्ट की, यूरोप की, तमाम लोगों की, नॉन मुस्लिम्स की, अपनी सोसाइटी को मजबूत करना, अपने कल्चर को मजबूत करना, अपने मुल्क को मजबूत करना है, और हमारी प्रायोरिटीज सरे पैलेस बनाना है, लंदन स्टेट का मालिक बनना है। जब हमारे हुक्मरान, अरब हुक्मरान, मैं तो इतना हिमाचल के साथ आज यहां पर बात करके जा रहा हूं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, कि अगर हमारे शाही खानदानों की खवातीन अब लंदन में लेस्बियन क्लब्स में मिलेंगी, तो अगर आप इस चीज का देख लें कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। जब उनकी आवाम ने अपने जिन हुक्मरानों को मुंतखब किया, उनका मकसद आवाम की खिदमत है, वो पूरी दुनिया में कामयाब है। हमारे हुक्मरानों का मकसद जब जेबें भरना है, जब प्रॉपर्टीज बनाना है, तो फिर वो क्यों फलस्तीन की बात करेंगे, वो क्यों कश्मीर की बात करेंगे, वो क्यों बर्मा की बात करेंगे? जो बर्बरियत बर्मा के अंदर मुसलमानों के साथ जो शुरू किया गया, अगर आप देख लें तो इंसानियत के नाते भी आपका साथ शर्म से झुक जाता है कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कहीं नजर आई हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारे सो कॉल्ड अरब कंट्रीज? कोई नजर नहीं आया। और इसका सिर्फ एक हल है, मैंने कहा अर्ज किया था 20 सेकंड में मामला खत्म हो जाएगा, जब एक ताकतवर को उससे ज्यादा ताकतवर आंख दिखाता है तो मामला खत्म हो जाता है। पाकिस्तान के हर मिसाइल की रेंज इसराइल है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने अंदर गैरत को जिंदा रखते हुए इसराइल को 1 घंटे का नोटिस दे कि या तो ये जुल्म बंद करो, अदरवाइज अब मैं तुम पर अटैक करने के लिए आ रही हूं, तो 1 घंटे में इसराइल बैकफुट पे चला जाएगा। कोई आपको बैकडोर चैनल की जरूरत नहीं है, ये मॉडर्न, ये इसके रॉकेट साइंस के लिए नहीं आपको चाहिए। या आप जितने मर्जी पैनल्स बनाते हैं, या यूनाइटेड नेशंस ले लें, या अरब लीग ले लें, या OIC ले लें, मैं तो इंतहा हिफाजत के साथ इन्हें बेशर्मों का एक मजमुआ कहता हूँ, जो वहां पर बैठ के हमारे मुफादात को सेव करने की बजाय हमें बेचते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। ये प्रैक्टिक, और ये कब उठेगा? जब नुमाइंदे आवाम के मुंतखब करता हूँ, जो आवाम के मिजाज को समझेंगे। तो हमें ये समझाना है, हमें ये करना है, दुनिया में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, दुनिया में कोई दुनिया की मुखालफत नहीं हो जाती। इसी अफगानिस्तान के ऊपर बम्बारमेंट थी, यही इराक का जहां कहा गया एटमी आलात हैं, कोई चीज़ नहीं मिली। इसी शाम के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया और इन बातियों से अटैक करवाया, कोई चीज़ नहीं मिली। इसी लीबिया को तबदेह कर दिया गया, कोई चीज़ नहीं मिली। तो एक आधा हम भी कर लें, अगर कोई चीज़ ना मिलेगी तो कौन सा ऐसा मसला है? हम हमेशा लॉजिक ढूंढते हैं, उस लॉजिक के पीछे अमन ढूंढते हैं। हम में और हमसे पिछड़ों में फर्क यह था कि वो घोड़े तैयार करते थे, लेकिन घुड़सवार की ये जरूरत होती थी कि वो उसे दरिया में डाल सके। आज हमारे घोड़े तो बहुत आला हैं, जो पूरी दुनिया के देशों में हिस्सा लेते हैं, अरबों रुपए उन पर जुआ लगता है, लेकिन अब हमें घुड़सवार मुयसर नहीं रहे। आप जंग घोड़े के सर पर नहीं जीते, घुड़सवार के सर पर जीते हैं। तो ये हम सबको, मेरा ख्याल है, मुत्तहिद होके, मुत्तफिक होके, और जब तक फलस्तीन में गिरने वाली हर लाश को हम अपने घर की लाश नहीं समझेंगे, हम मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं हो सकते। हमें मुत्तहिद और मुत्तफिक होके इस मसले पे अपनी हुकूमतों को प्रेशराइज करना है। थोड़ी देर के लिए मॉरल्स पीछे रख लें, अगर गिराना पड़े तो गिराना भी है, इसलिए कि वगरना अगले 20 साल भी हमारे आने वाली जनरेशन इन्हीं चीजों पर डिस्कस करती रहेंगी कि हुकूमतों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, करना चाहिए नहीं, कर दो। अगर ये फिलॉसफी होगी तो इंशाल्लाह हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वाकई